नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।